कितने तरह की संकल्प विकल्प की स्थितियां निर्मित होती हैं, कितनी आकांक्षा और इच्छाएं हमारे जीवन में उठती हैं, उन सबको अगर एक गृहस्थ विचार करके उतनी ही इच्छाओं को पूर्ण करे जिन इच्छाओं से अपना और दूसरे का दोनों का अकल्याण नहीं होता, तो भी वो अपने जीवन को आसानी से व्यतीत कर सकता है। वो थोड़ा सेंसिटिव है मेरी नाक, वो पीछे दरी बिछा रहे हैं तो उससे और मुझे थोड़ी मुश्किल पड़ गई, थोड़ा सा बोल दीजिए। कोई बात नहीं, वो थोड़ा बस जो कि गृहस्थ गृहस्थी में रहकर के भी और अपने जीवन को मर्यादित और अनुशासित इस तरह से कर सकता है कि वो अपनी इच्छाओं को सीमित करे, संतोषपूर्वक अपना जीवन जिए। ये हमने पिछले दिनों समझा और इसी आत्मसंतोष की साधना के विभिन्न चरण जब किसी व्यक्ति के भीतर संतोष आना शुरू होता है तो धीरे धीरे उसके आत्मिक विकास की तरफ कदम बढ़ने लगते हैं। संतोषी व्यक्ति काहे को पाप करे, काहे को झूठ बोलने की, काहे को चोरी करने की, मुझे चार चीजों में संतोष है, पांचवी चीज के लिए व्यर्थ हिंसा और झूठ चोरी करना पड़े तो कौन करे। जिसको जितनी कम चीजें चाहिए, जिसकी जितनी कम आवश्यकता है, जो जितना संतोषी है उसके द्वारा पहले चरण में इन पापों से मुक्त होने की प्रक्रिया अपने आप शुरू हो जाती है और फिर धीरे धीरे यही प्रक्रिया और सघन होती चली जाती है। अधिक से अधिक समय धर्म ध्यान में व्यतीत होने लगता है, जो अभी संसार के संकल्प विकल्प और अपनी इच्छाओं की पूर्ति में व्यतीत हो रहा था वह समय अब बचने लगा है और अपने आत्म कल्याण में, अपने आत्म उत्थान में उस समय का हम सदुपयोग करने लगते हैं। एक श्रावक दूसरे चरण में सुबह शाम बैठ करके और अपने आत्म विकास के लिए विचार भी करना शुरू कर देता है। अष्टमी चतुर्दशी जो पर्व के दिन है, उन दिनों में भी पूरे पूरे दिन धनाव्रत का पान करने लगता है। इतना ही नहीं, साधु जनों के जीवन से शिक्षा लेने के लिए और वो भोगोपभोग की सामग्री का निर्धारण कर लेता है। अतिथि के सत्कार और उनकी सेवा इत्यादि में भी अब संलग्न हो जाता है। ये दूसरे कदम में और इतनी चीजें उसके जीवन में आ जाती हैं। फिर और धर्म ध्यान की सघनता बढ़ती है तो सुबह दोपहर शाम आराम से बैठ करके पंच परमेश्वर जी का स्मरण करना और नियम से करना। अब संसार के व्यस्ततम शेड्यूल में से भी वो थोड़ा सा समय सुबह दोपहर शाम निकाल लेता है और घंटे भर बैठ कर दो घड़ी और सब पापों से मुक्त होकर के पंच परमेश्वर जी का स्मरण करता है। ये तीसरा चरण है। अभी पर्व के दिन और उपवास इत्यादि करके चारों कषायों का भी त्याग करके, अकेले चार प्रकार के आहार का त्याग नहीं, चार प्रकार के आहार के त्याग के साथ में चारों कषायों का भी त्याग करके, क्या करके मतलब उनकी मंदता रख करके आगे बढ़ता है, एक कदम और आगे बढ़ जाता है। और कल अपन ने समझा था कि अपने खान पान में वैसे भी बहुत मर्यादा वो कर चुकता है पर उसमें भी और अब प्रासिक वस्तुएं ही ग्रहण करूंगा ऐसा संकल्प जब ले लेता है तो ये पांच कदम श्रावक के जीवन में उसके आत्म विकास के लिए सहयोगी बन जाते हैं। असल में हम गौर से देखें तो हमारे जीवन में आगे बढ़ने में बाधक कौन लगता है? हमारी सांसारिक आशाएं और आकांक्षाएं। हालांकि संसार में जितनी आकांक्षाएं हमारी में वे पूरी नहीं होती पर एक आशा बनी रहती। जैसे जीवन में कई बार अपन ने अनुभव किया जिन चीजों से हमने सुख चाहा था उनसे सुख नहीं मिला, फिर भी हमारी आशा कहां पूर्ति मिलेगा ये बनी रहती। शरीर से हमने कई बार चाहा कि हम और अधिक सुख प्राप्त कर लेंगे, शरीर हमेशा अच्छा बना रहेगा, लेकिन हम जितनी कोशिश उसको स्वस्थ बनाने की करते हैं, जितनी कोशिश उसको शाश्वत बनाने की करते हैं, देखते हैं वो उतना ही नाशवान है, वो उतना ही बिगड़ जाने वाला है। ऐसा हम कई बार अपने जीवन से अनुभव कर चुके हैं, क्या संसार का और क्या शरीर का, लेकिन दोनों से हम सुख की आकांक्षा रखते हैं। शरीर से भी सुख मिलेगा मुझे, स्वस्थ रहेगा तो सुख मिलेगा, और संसार में मेरे पास जितनी भौतिक सुख सुविधा की सामग्री होगी उतना सुख मिलेगा। हालांकि जितनी भौतिक सुख सुविधा की सामग्री है उससे कोई खास सुख नहीं मिलेगा, फिर भी इससे नहीं मिल रहा, वो जो चीज है वो मिलेगी तो उससे सुख मिलेगा, ऐसी जो आशा है वो निरंतर बनी रहती। कई बार लगता है कि ये जो हमारे अंदर आकांक्षा और उस आकांक्षा की पूर्ति की जो आशा है, या ये कह लीजिए कि उस आकांक्षा की पूर्ति से मिलने वाले सुख का जो भ्रम है, वो शायद हमारे जीवन को आत्म उत्थान करने में बाधक बनता है। आप भी विचार करिएगा, मैं तो अपना विचार करके और आपको अपने विचार से अवगत करा रहा हूं। बस इतने दिन तक हमने जो जो विचार किया, हमने अपने विचार से और आचार्यों के विचार से अवगत कराते रहे आपको। आप भी इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाइएगा, स्वयं विचार करिएगा, कभी थोड़ा सा समय निकाल करके इन सब बातों को जितने स्मृति में रह जाए और निकाल निकाल करके कभी विचार करिएगा कि कितनी सही है, कितनी गलत है, कितनी करने लायक है, कितनी नहीं करने लायक, कितनी हम कर रहे हैं और कितनी और करनी है। ये सब पर जब तक आप इस तरह नहीं करेंगे तब तक इस तरह विचारों का आदान प्रदान तो होता रहेगा, लेकिन जीवन में हमारे वो परिवर्तन नहीं आ पाएगा। तो विचार जरूर से करना चाहिए इस बात पर कि हमने कितनी बार तो संसार की जिन चीजों में सुख चाहा उनसे हमें नहीं मिला, फिर क्यों नहीं हम उनसे निराश हो जाते हैं। निराश होने के लिए कह रहा हूं, दो तरह की निराशा है, एक तो जो हमारी आशा की पूर्ति नहीं होती तब निराश हो जाते हैं, और एक ये मालूम पड़ जाए कि ये आशा झूठी है तो फिर निराश हो जाते हैं। वो निराशा हमें और वास्तविक सुख की तरफ ले जाती है, ये निराशा तो दुख में ले जाती है। समझ रहे हैं आप, दो तरह से हम निराश होते हैं, जब हमारी आशाएं पूरी नहीं होती तब हम निराश हो जाते, लेकिन वो निराशा में दुख में ले जाते। और एक ये कि अरे हम बेकार में भ्रम कर रहे थे, इस चीज में से सुख की आशा कर रहे थे, इसमें से सुख मिल ही नहीं सकता, ठीक भ्रम टूट गया, निराश हो गए, ये निराशा भ्रम टूटने की है लेकिन ये सुख में ले जाती। जैसे कि हम सोचते थे कि रेत तेल में से तेल मिलेगा, तिल के तेल में से तेल मिलता है, लेकिन हमें एक झूठी आशा थी कि शायद रेत के तेल में से और तेल मिलेगा, लेकिन एक दिन वो आशा हमारी टूट गई, वो जो झूठी आशा थी वो नष्ट हो गई, लेकिन हमें दुख नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मालूम पड़ गया कि रेत में से थोड़ी निकलता है तेल, मक्खन को बिलो ना दूध को बिलोने से मक्खन मिलता है, लेकिन हम तो निरंतर पानी को बिलो रहे थे और आशा रख रहे थे कि अब निकलेगा अब निकलेगा, लेकिन किसी ने इशारा किया कि बाबा करते हैं पानी को मक्खन से जरूर निकलेगा, ये दूध तो कहिए पानी है, और ये पानी है दूध थोड़ी है, तो हम तो इसको दूध समझ रहे थे। हम तो इन भौतिक चीजों में सुख मिलेगा ऐसा भ्रम पाले रहे थे, उन्हीं में से सुख निकालने के लिए प्रोसीजर कर रहे थे। अब मालूम पड़ गया कि इन भौतिक उपलब्धियों में सुख नहीं मिलने वाला है, ऐसा जिस दिन एहसास हो जाएगा, मालूम सबको नहीं भैया, मालूम अकेले होने से नहीं होता, जिस दिन एहसास हो जाएगा उस दिन काम बनेगा, अभी तो मालूम तो सबको। ये अनुभूति हमें अपने जीवन में स्वयं होने लगे कि हां सच, अब हमें इस तरह की झूठी आशा छोड़ देनी चाहिए, और जब ये झूठी आशा छूट जाती है तब जाकर के और ये सारी चीजें आसान होती है। एक श्रावक के जीवन में भी सोचिएगा, वो आशान्वित तो है अपने जीवन में, लेकिन झूठी आशाएं तोड़ दी उसे, ये गृहस्थी में भी रह करके हो सकता है, ये नहीं समझना ये सब मुनि महाराज के जिम्मे है, ऐसा नहीं है। अपन ने नाम लिया है ये कि ये सब बातें जो है ना संसार से विरक्त होना और शरीर से विरक्त होना, ये सब तो महाराजों की जिम्मेवारी बात है। अपन तो आराम से शरीर संसार में रचे पचे रहो और शरीर की सुख सुविधा के साधन जुटाने में लगे रहो, क्योंकि अपन तो गृहस्थ हैं। नहीं ऐसे नहीं, ये बेईमानी वाला का इसको क्या बोलते हैं, जब खेल खेलने लगते थे तो उसमें बार 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 दान देना पड़ती थी, दान देना कहलाता। तो फिर देखो हम नहीं खेल रहे, नहीं तो उसमें क्या बेईमानी मत करवा, थक गए इतनी जो है विड्रॉ कर रहे, विड्रॉ नहीं कर सकते आप, ये नहीं कह सकते कि ये हमारा काम नहीं, ये तो महाराजों के दिल में नहीं। एक गृहस्थ भी अपने आध्यात्मिक विकास के लिए इतना कुछ कर सकता है, अपनी झूठी आशाओं को, झूठी आकांक्षाओं को, जिनको कई कई बार करके देख लिया जिससे कोई सुख नहीं मिला, उनको छोड़ देवे बस। इतना ही अगर गृहस्थ कर लेवे तो ये सारी चीजें जो प्रतिमाएं हमें बहुत कठिन मालूम पड़ती हैं देवी हमारे जीवन में और आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं। एक उदाहरण मैंने कहीं पढ़ा था, दो लोग एक सिनेमा देखने गए, तो सिनेमा में और ऐसा दृश्य आया जिसमें कि घोड़ों की दौड़ हो रही थी, तो दो घोड़े बहुत मजबूत, सबकी नजर सबकी आंख उन पर थी, बाकी तो बहुत से घोड़े दौड़ रहे थे, लेकिन एक नीले रंग का और एक काले रंग का घोड़ा, वो विशेष अलग से ही दिख रहे थे। और अब उन्हीं के बीच में एक तरह से कंपटीशन था कि कौन फर्स्ट आता है, तो दोनों दौड़ते चले जा रहे हैं। तो वो जो मित्र था तो वो अपने दूसरे मित्र से बोलता है कि लगता है कि ये काला वाला घोड़ा जीत जाएगा। तो मित्र कुछ नहीं बोला, उसने फिर से उससे कहा कि क्यों, तुम थोड़ा तो कैलकुलेशन कर रहे होगे, ये कितने स्पीड में दौड़ रहा है और ये नीला वाला तो लगता नहीं है पीछे पीछे है ये, हालांकि जस्ट पीछे है, तो इसके चांसेस तो अब थोड़े और रहेंगे, इसके चांसेस कम है काली वाला जीतेगा। तो दूसरा वाला जो मित्र था जो चुप बैठा था वो क्या बोलता है कि जीतेगा तो नीले वाला, अरे सामने दिख रहा है, इतना तो कोई भी कैलकुलेशन कर लेगा, एक भी बार तो उसने क्रॉस नहीं किया उस काले वाले को, पीछे पीछे ही दौड़ रहा है नीला वाला, अब तो डेफिनेटली है कि काले वाला जीतेगा। तो बोलता कि तुम्हारे तय करने से तय थोड़ी होता है, वो तो पहले से ही तय है नीले वाला जीतेगा। उसने कहा मतलब, बोले सुनो ये फिल्म है और मैं दूसरी बार देख रहा हूं, जब पहली बार देखी थी तो ये जीता था उसने, ये तय है, जिन्होंने एक बार इस संसार को बहुत गौर से देख लिया है, अपन तो बार बार देख रहे हैं, एक बार भी अगर ठीक से देख लिया, ठीक से देख लिया कि यहां पर जिन जिन चीजों में हमने आशा करी थी सुख की, वहां वहां से दुख मिलेगा, तब कोई भी व्यक्ति किसी चीज को हासिल करने की दौड़ में शामिल हो तो हम उससे आसानी से कह सकते हैं कि व्यर्थ है तुम्हारी ये दौड़, कुछ मिलने वाला नहीं है इसमें, सुख नहीं मिलने वाला है, जीत तुम्हारी नहीं होगी, तुम हमेशा हार जाओगे, लेकिन ऐसा भाव आता नहीं। ये अपनी थोड़ी सी कमजोरी है, कमी है, कि हम कितनी बार तो उसी सब चीजों को दोहरा चुके हैं, वो तो एक ही बार फिल्म देखने के बाद ये निर्णय ले चुका है कि काला वाला नहीं नीला वाला जीतेगा, और हम कितनी बार इस संसार के रंगमंच पर कितनी बार दौड़ चुके हैं इन भोग विलास की सामग्री के पीछे, हर बार हारे हैं, फिर भी हम ये तय नहीं कर पाए हैं कि हमें इनमें सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक आशा फिर भी हमारे अंदर बनी रह जाती है, असल में हम बनाए रखना चाहते हैं और कोई बात नहीं है, हमारी तो आशा कई बार टूटती है लेकिन हम उसको पुनः पुनः किसी और जगह प्रक्षेपित कर देते हैं, किसी और जगह डाल देते हैं, यहां से आशा टूटती है दूसरी चीज में आशा जागृत कर देते हैं, पूरी तरह से सब दूर से आशाएं टूट जाए ऐसा हम अंततः निराश हो जाए, निराश हो जाएंगे तो फिर तो संसार से विमुख ही हो जाएंगे, विरक्ति हो जाएंगे,
हम अपनी आशाओं को एक जगह से टूटती है दूसरी जगह स्थापित कर लेते हैं, शायद इसमें मिलेगा, शायद इसमें मिलेगा, इसमें नहीं मिला कोई बात नहीं, ट्राई वेल अगेन एंड अगेन, इसमें मिलेगा, फिर से करो, फिर से करो। इस तरह हम बदलते रहते हैं, अपने ऑब्जेक्ट्स बदलते रहते हैं। हमने जबकि कई बार उन सब चीजों का अनुभव किया है, फिर भी हम दूसरे संदर्भ में, दूसरे रूप में और फिर से उस चीज से आशा रखने लगते हैं, और इस आशा को हम निराश ना हो जाए इसलिए बनाए रखते हैं। इसका भी एक उदाहरण है ताकि ये समझ में आ जाए, फिर बाद में देखेंगे कि अगर ये आशा हमारी थोड़ी घट जावे या कि पूरी तरह टूट जावे तो आसानी से एक बड़ा काम और कर सकते हैं, एक बड़ा कदम और रख सकते हैं अपन आज, छठवां कदम। लेकिन जरा इस उदाहरण से समझ लें कि हम अगर अपनी आशाओं को बनाए रखना चाह रहे हैं, निराश होने नहीं चाह रहे संसार से, तब फिर नहीं बनेगा, तब फिर तो सिर्फ जो है विचार ही रह जाएगा, जीवन में घटित नहीं हो पाएगा। क्या हुआ, एक व्यक्ति ट्रेन में यात्रा कर रहा था, ट्रेन में यात्रा करते करते और बीच में चेकिंग के लिए कौन आता है, हाँ वो आ गए, वो हम सोच रहे थे कि रेलवे वाले बोलेंगे तो सब लोगों को मालूम है कि टीटी आता है, हम सोच रहे थे सिर्फ गेट वालों को मालूम है, ये सबको मालूम, चेक करने के लिए कोई ना कोई तो आता ही है। कई बार अपने जीवन में भी ऐसा हो चुका, चेक करने के लिए कोई ना कोई आ ही जाता है कि कैसी चल रही यात्रा, तब या तो अपन कुछ ना कुछ बहाना बना देते हैं या कि विड्रॉल कर लेते हैं। उस व्यक्ति ने भी जैसे ही टीटी दिखा उसने फौरन अपने पॉकेट वॉकेट में हाथ डालना शुरू किया, ऐसा शो किया कि जैसे मैं टिकट तो खरीद चुका हूं लेकिन निकाल रहा हूं। टीटी ने देखा कि हाँ टिकट होगा जब तो ये पॉकेट वॉकेट में हाथ डाल, तो इस वाले पॉकेट में हाथ डाला वहां भी नहीं, इस वाले में डाला वहां भी नहीं, सब पॉकेट में हाथ डाल के देख रहा हूं, बड़ा मजा। अब वो खड़ा हुआ है और ये जनाब जो अपने ढूंढने में लगे, अब जब सब पॉकेट में नहीं मिला तो फिर उसने अपने जूते के बंद खोलना शुरू किए, तो जूते के बंद खोलना शुरू किए तो टीटी जरा टेंशन में आ गया कि क्या कर रहा है, तो उसने कहा ढूंढ रहा हूं टिकट ढूंढ रहा, बाकी लोग भी जो है सकते में आ गए कि आदमी तो वैसे उतना वैसा नहीं लग रहा है, सीधा साधा लग रहा है, जूते काहे को उतार रहा है। तो उसने जूते के बंद खोल करके और फिर जूते उतार करके उसको ऐसे जड़ाया, शायद इसमें रखी हो मिल नहीं रही, टिकट तो नहीं थी लेकिन टिकट नहीं मिल रही। अब उसने इतनी देर लग गई, अब उसके बाद उसने अपनी अटैची खोली, अटैची में रखी जहां रखी जा सकती थी उसमें सब ढूंढ ली। टीटी कह रहा है कि भैया निकालो जल्दी, बोली ढूंढो, कितना समय लग जाएगा अपन लोगों को, संसार में सुख नहीं है ये बात ढूंढने में, पूरी जिंदगी ढूंढते रहो, देख रहा हूं सब चीजें कौन कौन में सुख मिले, तभी वो रहेगी अभी वहां बंबई में भी जाना रहेगा, दिल्ली घूमना भी रहेगा, शायद वहां सूटे वहां सुख है। अब ऐसा अगर घटित कर ले तो मुश्किल पड़ गई, उसमें तो मजा आ रहा था अब नहीं आ रहा है। पहले तो उसकी कहानी जब चल रही थी जब तो लग रहा था कि कैसा बुद्धू है, और अब कैसा लग रहा है कि हम भी क्या कर रहे हैं, कोई आकर के खड़ा हो जाए कि बोलो बोलो कितना सुख मिला, देख रहा हूं बताता हूं कितना कितना मिला, इसमें इसमें कहीं नहीं मिला, ऐसा कह नहीं सकते कि कहीं नहीं मिला, निराश हो जाएंगे अंततः, और हम निराश नहीं होना चाहते, हम आशा बनाए रखना चाहते। वो भी यही कर रहा था, अब तो बहुत ज्यादा अति हो गई मालूम, सबने घूमने के बाद उसमें जो एक जोड़ी कपड़े रखे थे उनके पॉकेट में भी हाथ डाल लिया। अब तो जो है टीटी को थोड़ी गुस्सा आ गई, इससे भी एक कदम आगे बढ़कर के जब उसने भी नहीं मिला सब में नहीं मिला तो बाजू वाले के पॉकेट में जैसे ही हाथ डालने के लिए बढ़ा कि शायद उसमें रखी होगी मेरी टिकट, सबने कहा कि करते क्या हो, तुम्हारे अपने पॉकेट में क्यों नहीं देख रहे? वो एक पॉकेट को सामने वाले को हाथ से पकड़े हुए था, बाकी सब ने ढूंढ रहा था, तुम अपने वाले पॉकेट में क्यों नहीं देख रहे? तो उसने कहा कि सुनो, एक ही जगह तो शेष है जहां थोड़ी सी आशा टिकी हुई है कि शायद यहां होगी, मैं उससे भी निराश होना नहीं चाहता, वरना उस पॉकेट में हाथ डालूंगा वहां भी नहीं मिलेगी, तब तो बहुत निराश हो जाऊंगा कि टिकट कहां चली गई। देख रहे हैं, ठीक ऐसा ही हम कर रहे हैं, अपने जीवन में झांक करके नहीं देख रहे हैं कि कहां सुख है और कहां मैंने दुख पाया है, सब दूर दूसरे तक के पॉकेट में हाथ डालना मतलब दूसरी चीजों में, इसमें सुख मिलेगा, इसमें सुख मिलेगा, यही ना कर रहे हैं अपन। ये तो एक उदाहरण है, पर हमारे अपने जीवन में पूरी तरह से घटित होता है। ऐसा विचार करके हम थोड़ा सा अपने जीवन में परिवर्तन लाएं तो आगे बढ़ सकते हैं, एक कदम और आगे बढ़ा सकते हैं। अभी तो हमें खाने पीने की चीजों में और जब चाहे तब खाने पीने में और सुख मालूम पड़ता है, जबकि कितनी कितनी बार और क्या क्या चीजें 56 प्रकार के भोजन भी करके देख लिए, क्षण भर को सुख मिलता है, फिर इसके बाद बेरस होए विपाक समय की सेवत लागे नीके, उसके बाद जिस तरह से वे हमें निराश करते हैं, दुख में डाल देते हैं, इस बात का एहसास होते हुए भी हम उसे झुटला रहे हैं, अगर थोड़ा सा समझ में आ जाए तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि अपने जीवन में बहुत परिवर्तन हम कर सकते हैं। अन्नम पानम खाइयम खाद्यम लेयम नाश नाति यो विभावर्याम सचरात्रि भुक्ति वीरता सत्वे शंकंप मान मना। जिसके मन में प्राणी मात्र के प्रति दया और करुणा का भाव उत्पन्न हो गया है, जिसे अब संसार की आशाएं, संसार में सुख की आशाएं शेष नहीं रह गई हैं, वो क्या करता है, चारों प्रकार की भोजन सामग्री को न रात में स्वयं ग्रहण करता है, न दूसरे को ग्रहण करने की सलाह देता है, न दूसरे को ग्रहण करने के लिए बाध्य करता है, न दूसरा कोई ग्रहण करे तो उसका समर्थन करता है। इतना भी घर में रह करके कर सकता है। ये कब होगा, जब हमें इन सब चीजों में जो झूठे सुख की आकांक्षा है वो नष्ट हो जाएगी तब, वरना तो संभव ही नहीं। ये जो एक प्रक्रिया चल पड़ी है, मैं सोच रहा था कि मैं सीधा कह दूं, इसको शुरू में कह देता कि रात्रि भोजन का त्याग कर दें तो हो जाता रात्रि, लेकिन रात्रि भोजन का त्याग कहने से किस किस ने किया आज तक, कितनी बार तो सुन चुके। 4 महीने में मेरे ख्याल से जितने दिन है उसमें 4 दफे तो सुना होगा, हो सकता है एक दिन में 4 दफे सुना होगा कि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, छूटा। बहुत मुश्किल है, क्यों? क्योंकि आशा बनी हुई है, आकांक्षाएं अभी जीवित हैं। जब तक हमारे भीतर इन सब चीजों में सुख की आशा बनी रहेगी तब तक हम छोड़ेंगे भी, तब भी छूटेगा नहीं भीतर से, बाहर से जरूर छूट जाएगा। एक आशा ही तो बनी हुई है, दूसरे के घर में गए वो रात में खिला रहा है, तैयार हो गए, कौन सा सुख मिल रहा है? मिला होगा तब तो हमारे संबंध बने रहेंगे, अच्छी बात, संबंधों से सुख मिल रहा है नहीं? आज तक तो उनसे संबंध बनाने में कोई सुख नहीं मिला, लेकिन फिर भी बनाए रहा। ये क्या चीज है? मुझे लगता है कि उसका मुख्य कारण यही है, एक जो मेरे भीतर इन सब चीजों से सुख की आशा बनी हुई रहती है वो मुझे इन चीजों से विरक्त नहीं होने देती, वरना कितनी ही देर लगनी, दिन बहुत बड़ा है भोजन करने के लिए, क्या जरूरत पड़ी है कि रात में खाएं और दूसरे को खिलाएं, और दूसरा कोई खा रहा हो तो हाँ ठीक है खाओ। ये तीनों चीजें गृहस्थी में रहकर के भी आसानी से छोड़ी जा सकती हैं, कठिन कुछ नहीं है, लेकिन भीतर से आशा छूटनी चाहिए सुख की, कि इनमें सुख है। अभी जब तक हमें इस चीज में सुख मालूम पड़ रहा है, रात में खाने में आनंद मालूम पड़ रहा है, मजबूरी अजबूरी कुछ नहीं है, कमजोरी है, कमजोरी को मजबूरी का नाम दे देते हैं अपन, और कुछ नहीं, बेईमानी करने के लिए बहाना है ये तो। जिस दिन तय कर लिया भूखे रह जाएंगे, मरेंगे मरेंगे नहीं, कोई नहीं मरा आज तक भूखा, खा पी के मरने वालों की संख्या बहुत है। एक दिन नहीं खाएंगे तो कोई ऐसा नहीं है कि मरण हो जाएगा, लेकिन ये आशा ये आकांक्षा जो न कराए वो कम है। आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि हम अपनी इस आकांक्षा को थोड़ा सा, इस मूर्छा को थोड़ा सा घटाएं, जरा सा विचार तो करें, प्राणी मात्र के प्रति थोड़ी तो दया, अपने ऊपर भी थोड़ी तो दया करें। 24 घंटे अपने प्राणों को तकलीफ में डाले हुए हैं, फिर भोजन, कितनी आकुलता करनी पड़ती है। शाम को भोजन कर लिया तो सारे लोग निराकुल हो गए, अब कोई आकुलता नहीं, ना बनाने की, ना खिलाने की, ना खुद खाने की, शांतिपूर्वक और दूसरे धर्म ध्यान के लिए हमारे पास समय निकाला है। वरना 10 बजे रात तक खाना खाने वालों का, खाना खिलाने वालों का, खाना खाने आने वालों का इंतजार करने का सारे विकल्प लगे हुए, जबकि डिनर के लाने वाला मील इन ए डे, डिनर, डिनर का मतलब ये नहीं है कि रात में खाया जाने वाला भोजन, डिनर के मायने हैं जितना प्रकाश 4 बजे दिन में रहता है उतने प्रकाश में खा लिया जाने वाला। विदेश में 8 बजते हैं उतने बजे, आपके यहां के 8 बजे नहीं, उनके 8 बजे, उनके 8 बजे इतना उजाला रहता है जितना अपने यहां 4 बजे रहता है। लेकिन नकल भी करी मैंने बिना अकल के करी, होशियार बनने के चक्कर में। और लंच के मायने क्या होता, आफ्टरनून किया जाने वाला मील, 1 बजे भोजन करते हैं उसको लंच कह रहे हैं अपन। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो हमारे टाइमिंग से 4 घंटे घटा दो, कितने बजे, 1 बजे में 4 घंटे कम करने पर 9-10 बजे ना, उतने बजे भोजन किए जाने वाला लंच कहलाता है, उनके लिए 1-1.5 बजे होगा लंच, हमारे यहां तो 10 बजे हो जाएगा वो लंच। और ब्रेकफास्ट इज द ब्रेकफास्ट, और वो जो 4 बजे भोजन किया था तब से भोजन छोड़ा है, एक तरह से उपवास हो गया है सवेरे, उसी का नाम ब्रेकफास्ट है, जो सुबह सुबह और हम दर्शन करके जाते हैं, फिर थोड़ा सा कर लेते हैं भोजन और कुछ नहीं, इतने देर में भोजन किया है इसलिए ब्रेकफास्ट कहलाता है। नाश्ता वास्ता नहीं कि सुबह से आराम से और भोजन कर, भोजन ही उस तरह से 8-9 बजे जो है अच्छी हैवी मिठाई विठाई और सब खा ली, फिर अब 2 बजे तो लगेगी भूख, और जब 2 बजे खाया है तो रात 8 बजे खाओगे। सारा जो है एक सिस्टम अपन ने अपने हाथ से और डिस्टर्ब किया, जबकि सीधी सी प्रक्रिया थी, सूर्यास्त तो सूर्य उदय से ही दिन और रात का विभाजन होता है, आपके बजने उजने से दिन और रात का विभाजन नहीं होता कि 6 बजे और 7 बजे, सूर्य अस्त हो गया यानी रात शुरू हो गई, सूर्य उदय हो गया यानी दिन, और सूर्य अस्त होने के 2 घड़ी पहले अपने भोजन से निवृत्त हो गए, और सूर्य उदय होने के 2 घड़ी बाद भोजन की प्रक्रिया शुरू होगी उसके पहले। यह है दया और करुणा, ये है अपने जीवन में अपनी मर्यादाएं, अपना अनुशासन स्वयं बनाना। जीवन का कोई सिद्धांत है नहीं ये कि ऐसी लापरवाही में व्यतीत कर रहे हैं अपन, कभी इस तरह भी सोचना चाहिए। कोई डिसिप्लिन है, कोई सिद्धांत है, कुछ बना के चल रहे हैं अपने जीवन का ये कि बस एक ढेर चाल। कई बार ऐसे लगता है कि बस अपने जीवन में कोई मर्यादा नहीं, कोई अनुशासन नहीं, अपने जीवन का कोई जीने का कोई सिद्धांत ही नहीं। दुनिया भर को तो सिद्धांत बताते हैं, देख लो, समझाने के लिए अपने बच्चों को समझाएंगे कि यह करना चाहिए तो नहीं करना चाहिए, वो स्वयं किसी दिन पूछ ले कि आपने कौन से सिद्धांत बना रखे अपने जीवन के, ये सिद्धांत बना रखा है कि 10 बजे रात को खाएंगे, ये सिद्धांत है आपका। ये विचार करें, थोड़ा सा आराम से विचार करें। महाभारत में जैन धर्म ग्रंथ में तो लिखा ही हुआ है, महाभारत में लिखा है चत्वारी नरकानी द्वाराणि, नरक के 4 द्वार हैं, प्रथमम रात्रि भोजनम, सबसे पहले नंबर। सुन रहे हैं आप? ऐसी चीजें जरा गौर से सुना करिए, याद रहने की सह कहां आएंगी कभी। अभी तो बहुत मुश्किल है, अभी तो हो सकता है कि आज ही और कराकंद रात में ही खाना पड़े, बना होगा घर में, है कि नहीं? पटाखे फोड़ेंगे उसके बाद फिर बाद में कराकंद खाएंगे। परंपरा भाई बहुत दिन से चली आ रही, आपके यहां नहीं चलती वो, शायद और कोई चीज चलती चलती तो हो। मिलने जाते हैं लोग रात में, मिलने जाते शमावनी के दिन भी रात में मिलने जाएंगे और बढ़िया सबके यहां का नाश्ता करेंगे रात में। शाम से शुरू होता मिलने जाना, यहां तो यही चलता, हमने तो देखा उधर जयपुर में तो खूब 6 बजे शाम से मिलने जा रहे हैं सबसे छमावनी के दिन, और छमावनी के दिन मिलने का भी नाश्ता करेंगे जा रहे सबके यहां, वो उनके यहां नाश्ता करेंगे, उनके यहां नाश्ता करेंगे, कब तक चलेगा? 12 बजे तक चलेगा, उस दिन तो फ्री। ये हमारे जीवन का सिद्धांत है भाई, अपने ऊपर हंसने का मन तो नहीं होना चाहिए, अपने ऊपर रोने का मन होना चाहिए, अपनी आत्मों पर दुखी होने का मन तो बनाना चाहिए। दूसरे पर तो हंस लेते हैं अपन, पर अपने ऊपर हंसना मतलब अपने ऊपर रोना ही है एक तरह से। हमें विचार करना चाहिए इन चीजों का, हमारी अपनी परंपरा ये नहीं रही है। हम वे लोग नहीं हैं जो अपने जीवन को लापरवाही में व्यतीत करें, हमें अपने जीवन के सिद्धांत बना रहना चाहिए, हमें अपनी परंपरा का निर्वाह करने के लिए अपने जीवन को अनुशासित करना चाहिए, और इतना ही नहीं अपने आत्म कल्याण की भावना, अपने आत्म विकास की भावना से भी इन सब चीजों को और व्यवस्थित कर लेना चाहिए। रात्रि में भोजन की प्रक्रिया जो बहुत तेजी से बढ़ती चली जा रही है उस पर हमें विचार करना चाहिए। छठी प्रतिमा लेना तो बहुत बहुत विरले लोगों का काम है आज के समय में, कि स्वयं भी नहीं खाऊंगा ना किसी को खिलाऊंगा, कोई आ जाएगा घर में तो हाथ जोड़ लूंगा कि देर से आए आप, अब तो कल मैं आपकी सेवा कर पाऊंगा, पानी पीना हो तो पानी पिला सकता हूं, वरना वो भी चारों प्रकार के आहार में तो पानी भी आता है, वो भी नहीं कर पाऊंगा मैं तो, बच्चे हैं बच्चे संभालें, वो अगर पिला दें तो पिला दें, मैं तो उन सब चीजों में शामिल नहीं होऊंगा। घर गृहस्थी में रह करके भी और इस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है, बढ़ने का पुरुषार्थ करना चाहिए। रात्रि में हम लोग बहुत तेजी से अब तो सामूहिक रूप से और बैठ करके भोजन करने लगे हैं। मैंने इस बार ये निर्णय कर लिया है कि पिची परिवर्तन में मुझे पुरानी पिची जिसे देनी है उसके व्रत तो ठीक ही हैं, लेकिन जिनसे नई पीछी लूंगा उनके सारे व्रतों के बावजूद भी एक व्रत पर बहुत जोर दूंगा कि जो समूह में रात्रि में भोजन करेगा मैं अपनी पीछी में उससे हाथ नहीं लगाने जाऊंगा। और इतना ही नहीं, जो होटल में बैठ करके भोजन करेगा वो भी हमारे पीछी में हाथ लगाने का अधिकारी नहीं। हम लोग जिस तरह से अपने धर्म की अभिनय कर रहे हैं वो बहुत शर्मनाक है। हम लोग 10-10 दिन के उपवास करते हैं पर्युषण में और उसके बाद भी होटल में बैठे दिखाई पड़ते हैं तो अपने धर्म की हंसी उड़ाते हैं कि ये वही है जो 10 दिन तक जिनने उपवास किया था और आज होटल में बैठे हुए दिखाई, ये वही है जिन्होंने कि महाराज के पीछे परिवर्तन में पीछे में हाथ लगाया था, या माता जी आई थी तो उनके पीछे परिवर्तन में हाथ लगाया था और आज ये देखो। और समूह में जब किसी के यहां विवाह हुआ है तो उसमें रात में जाकर के सबके बीच खा रहे हैं। इतनी मर्यादा तो अब अपने को अपनी निर्धारित करनी ही पड़ेगी, अपने आत्म कल्याण के लिए और आने वाली पीढ़ी के कल्याण के लिए, दोनों के लिए। इतना निर्णय सामाजिक रूप से भी करना चाहिए, मैं तो यह भी सलाह दूंगा कि सामाजिक रूप से भी ये नियम होना चाहिए कि समाज में कोई भी व्यक्ति अगर रात्रि में किसी को भोजन के लिए बुलाया जाएगा तो सामूहिक रूप से उसका बहिष्कार कर दिया जाएगा कि हम कोई नहीं आएंगे आपने रात में हमें भोजन के लिए बुला करके हमारी इंसल्ट की है, इसलिए हम आपके समूह में अब भोजन के लिए आपके यहां नहीं आएंगे। हमारी रिश्तेदारी खत्म होती है तो हो जाए। ये एक बार सामाजिक रूप से और सामूहिक रूप से निर्णय लेना पड़ेगा। सामूहिक रूप से दिन में खाएं, खाने के लोग बैठते थे दिन में और खाने के लिए एक दूसरे से हर्षित पूर्वक और परोस करके खाते थे, लेकिन ये तो कोई प्रक्रिया नहीं है कि हम रात्रि में, और सिर्फ इसलिए कि भाई क्योंकि चल रहा है सब लोग कर रहे हैं इसलिए हम करें, ये प्रक्रिया तो धीरे धीरे, मैं तो ये मानूंगा कि अगर मैंने वाकई में यहां पर 4 महीने अपने व्यतीत किए हैं और आपके दिल में मेरे प्रति थोड़ी भी लगन है, लगाव है, श्रद्धा है थोड़ी सी भी, तो मैं तो आपसे यही आशा रखूंगा। वैसे तो आशाएं रखना दुख का कारण बनती है, पर फिर भी मैं ये आशा रखूंगा कि कम से कम यहां के लोग छठी प्रतिमा भले ही न ले पाए लेकिन इतना तो जरूर कर लेंगे कि हम समूह में अब किसी के यहां पर रात में जाएंगे भले ही पर खाएंगे, आपके ब्याह में हम आएंगे पर रात में हम आपके यहां कुछ नहीं खाएंगे। ये हम एक बार सामाजिक रूप से भी और व्यक्तिगत रूप से भी अगर ये निर्णय ले लें तब तो मैं समझूंगा कि आपके मन में जरूर थोड़ी सी अपने साधु जनों के प्रति श्रद्धा है या लगन है, वरना जैसा चल रहा है वैसा तो चलते ही रहेगा, इसमें तो कोई विशेष वो नहीं है। आचार्य श्री ने एक बार बताते हैं 2-3 साल पहले, और इसी बात को पूरे मन से, जबकि 5-10 हजार लोग इकट्ठे हुए थे नैमावर में, तब कहा था कि आज आपसे मांग रहा हूं, आज तक नहीं मांगा कुछ भी, तो आश्चर्य करने लगे कि आप हम लोगों से क्या मांग रहे हैं, हम आपसे मांग रहे हैं सिर्फ इतना कि आने वाली पीढ़ी को संस्कारित करने के लिए आप यहां से लौटते वक्त रात में भोजन नहीं करने का क्लियर करते, लेकिन हम इन आए हुए प्रतिनिधियों से यह भी चाहेंगे कि ये भी इस मंच से ये घोषणा करके जाएं कि ये जैन हैं, इसलिए ये भी सामूहिक रूप से रात्रि में भोजन नहीं करने का नियम लेके जाएंगे। सबके सिर नीचे हो गए, अपने भी हो गए, कोई सब ये कह के आ गए थे वो 5 लोग कि हम अपनी कह सकते हैं, हम नहीं करेंगे। आज ये स्थिति हमारी है, कोई तो हमारी अहिंसा को बहुत ऊंचा समझता है और हमारी उस अहिंसा की ऊंचाई को पहचान करके और हम जैसा कहते हैं वो तैयार हो जाता है, लेकिन हम अहिंसक कहलाने वाले लोग और रात्रि भोजन में होने वाली हिंसा को पहचानने वाले लोग और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं, तेजी से आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं, अब तो स्टेटस वैल्यू बन गई है। भाई हम तो आज के दिन यही अपेक्षा रखेंगे तो शायद कल का दिन वाकई में रोशनी लेकर के हमारे जीवन में आएगा, अगर ये बहुत बड़ा अंधेरा हमारे जीवन से हट जाएगा तो ही हमारा देव दर्शन करना सार्थक होगा, तो ही हमारी पूजा आराधना सार्थक होगी, तो ही हमारा आहार दान देना सार्थक होगा, सब कुछ तभी सार्थक होगा जबकि हम इस परंपरा को जो निरंतर हम अपने हाथ से नष्ट कर रहे हैं एक बार फिर से हम इसको अपने जीवन में बनाएंगे तो ही हमारे जीवन की सार्थकता है। इसी भावना से कि आचार्य भगवंतों के द्वारा बताए गए इस जीवन को अच्छा बनाने के मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन को अच्छा बनाएं। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज।
महावीर भगवान की, आचार्य समंत भद्र स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज, इनको रिवाइज करते हैं। और आगे के 5 मिनट करते हैं। प्राणाति पात विकथ व्याहारस्तेय काम मूर्तेभ्यः। स्थूलेभ्यः पापेभ्यो द्युपरमण मनोव्रतं भवति। संकल्पात् कृतकारित मननाद्योगत्रयस्य चरसत्वान् नहि नस्ति यत्र राहुः स्थूलवधाद् विरमणं निपुणा छेदन बंधन पीड़न मतिभारारोपण व्यतीचारा आहार वारणापि च स्थूलवधाद् द्युपरते पंच स्थूलमलीकं न वदति न परान् वादयति सत्यमपि विपुदे यत्तद्वदन्ति सन्तः स्थूलमृषावाद वै रमणम् परिवादरवोप्याख्या पैशून्यं कूटलेखकर्णं च न्यासापहारितापि च व्यतिक्रमाः पञ्च सत्यस्य निहितं वा पतितं वा सुविस्मृतं वा परस्त्वमविश्रिष्टम् न हरति अन्न च दत्ते तद्कृशचौर्यादुपारमणम् चौरप्रयोगचौरा पादान विलोप सदृश्य सन्मिश्रा हीनाधिक विनिमान पञ्चास्ते ये व्यतिपाता न तु परदारान गच्छति न परान् गमयति च पापभीतेर्य सा परदारनिवृत्ति स्वदारसन्तोषनामापि अन्यविवाहकरणे नङ्गक्रीडा विटत् त्वविपुलत्रशः अन्यविवाहकरणा नङ्गक्रीडाविटत्वविपुलत्रशः गड़बड़ कर रहे हैं पढ़ने में ना, ये कोई बात नहीं। इत्त्वरिकागमनं च स्मरस्य पञ्चव्यतीचारा धनधान्यादि ग्रन्थम् परिमाय ततोदिकेषु निष्प्रहता परिमित परिग्रहस्य परिमित परिग्रह दीक्षा परिणाम नामापि अतिवाहनाति संग्रह विस्मय लोभाति भार वहनानी परिमित परिग्रहस्य च विक्षेपा पञ्च लक्ष्यन्ते। इन छह श्लोकों का अर्थ समझते हैं। पांच पापों से विमुख होने का नाम बाह्य चारित्र है। वो पूर्ण रूप से भी पालन किया जाता है और आंशिक रूप से भी। सद्गृहस्थ के लिए पांच पापों का त्याग आंशिक रूप से बताया गया है। अहिंसानुव्रत में स्थूल हिंसा का त्याग किया जाता है। स्थूल हिंसा के मायने हैं त्रस्त जीवों का घात नहीं करना और जो स्थावर जीव हैं उनका भी सावधानी पूर्वक ही अपना आचरण करना, जिससे उनकी भी रक्षा हो सके, उनका भी घात ना हो। या कि संकल्पी हिंसा का त्याग करना, ये भी स्थूल रूप से अहिंसानुव्रत के पालन करने की प्रक्रिया है। ऐसा झूठ नहीं बोलना और ऐसा सच भी नहीं बोलना, न दूसरे से बुलवाना जिससे कि दूसरे के प्राणों का घात हो जाए। पर हितकारी कठोर और निंदनीय वचनों का त्याग कर देना, ये सत्यानुव्रत है। आज अचोरी या अस्तेयानुव्रत किसे कहते हैं ये समझ रहे हैं। निहितं वा पतितं वा, किसी की रखी हुई वस्तु, पतित यानी किसी की गिर गई वस्तु, या सुविस्मृतम किसी के द्वारा भूल गई वस्तु, परस्वम अविश्रष्टम, परस्व यानी बिना, परस्व यानी दूसरे का बिना दिया हुआ धन। दूसरे ने अपन को कोई वस्तु नहीं दी है और किसी की वस्तु रखी हुई है या गिर गई है, पड़ी हुई है, या कि वो भूल गया है, ऐसी किसी भी स्थिति में बिना दी हुई वस्तु को दूसरे की न हरति न चा अन्न दत्ते, न स्वयं उसे ग्रहण करता है न दूसरे को देता है। ये अकृष्टचोर्यात् यानी स्थूल रूप से अचोरी का पालन करना कहलाता है। कितनी चीजें हो गई, कोई किसी की वस्तु रखी हुई है। पहले लोग जमीन के अंदर सुरक्षा की दृष्टि से चीजें रख देते थे, फिर वो दूसरे को मिल जाए, अगर ऐसा होता था, मकान बेच दिया और वो जमीन में रखी हुई धन संपदा दूसरे को मिल गई, तो वो क्या करता था, भाई मैंने आपसे मकान लिया है पर ये जो इसमें धन संपदा है वो आपने मुझे नहीं दी, इसके मालिक आप ही हैं, उसे लौटा देता था। लेकिन यदि उस धन संपदा के जो दूसरे की रखी हुई है ग्रहण करने का भाव आ जावे तो भी चोरी है। ग्रहण कर लेना तो चोरी है ही, ग्रहण करने का भाव आ जाना भी चोरी है। यहां इस बात का ध्यान रखने की, कह रहे हैं इसी तरह रास्ते चलते किसी की कोई चीज गिर गई या कोई व्यक्ति अपनी चीज कहीं पर भूल गया रख करके, तो उसे भी नहीं लेना। अक्सर ऐसा होता है अपन लोगों के साथ में कि अपन रास्ते से चले जा रहे हैं, कोई रुपया वगैरह पड़ा मिल गया तो अपन उठा लेते हैं। और किस भाव से उठाते हैं, हमें चाहिए नहीं है लेकिन यहां पड़ा हुआ है, गुल्लक में डाल देंगे मंदिर में। भैया ये प्रक्रिया पता नहीं किसने शुरू कर दी, ये प्रक्रिया भी ठीक नहीं है। आप यदि कर सकें तो उसके रुपयों को उठा करके उसके मालिक को दे सकें तो ही उठाएं, अन्यथा उसे वहीं पड़ा रहने दें। आप ये सोच रहे हैं कि मैंने गुल्लक में डालकर अच्छा किया, तो गुल्लक में आपके डालने से या किसी अन्य को देने से वो दान नहीं कहलाएगा। वो व्यक्ति ढूंढता हुआ वहां आएगा, वहां वो चीज ना पाकर के संक्लेशित होगा, कहां चली गई, मैं यहीं से निकला था, अब ये मिली नहीं है। ग्रहण कर लेना तो चोरी है ही, कि हमारे मन में उसकी गिरी हुई चीज को हमने रख ही लिया, ये तो चोरी है ही। लेकिन इसमें भी दोष है कि हम उसे उठा करके दूसरे को दे दें या कि दान कर दें, वो दान भी नहीं कहलाएगा, बल्कि वो दूसरे के संक्लेश में कारण बनेगा। इसलिए उसे वहां ही ज्यों का त्यों पड़ा छोड़ दे दें, कोशिश अगर बन सके तो उसके मालिक तक पहुंचा दे दें। जैसे कैंपस के भीतर यहां गिर गई तो अपन क्या करते हैं, भैया इसके मालिक की खोज कर दो, अनाउंस कर दो इसका मालिक कौन है, मेरे पास है उसकी सामग्री, ये तो ठीक है, लेकिन उसको तो कोई को मत बताओ, उसको तो भंडारा में डाल दो, तो ये ठीक नहीं है। ये आपने कहना चाहिए ठीक, आप सोच रहे होंगे कि आपने ठीक किया, पर ये ठीक नहीं। तो इस तरह निहितम वा पतिदम वा सुभस्मृतम, दूसरे ने आपको नहीं दी है, किसी की गिर गई है या किसी की पड़ी हुई है, किसी के द्वारा भूल गई है, उसके मालिक तक भेज सकें तो बहुत अच्छा, वरना उससे ग्रहण करने का विचार भी ना करें और ना ग्रहण ही करें शरीर से भी वाणी से भी, कि मैं इसको कोई नहीं देख रहा होता तो ग्रहण कर लेता, ऐसा भी नहीं, तब कहलाएगा ये अचोरी अनुव्रत है, अचोरी सोचिएगा। और उसमें तो महाव्रत में तो पर पदार्थों के ग्रहण का ही त्याग कर दिया, इसमें तो कुछ पदार्थों को ग्रहण करूंगा, जो कोई मुझे दे देगा उसको तो ग्रहण करूंगा, जो नहीं देगा उससे ग्रहण नहीं करूंगा, इतने ही आंशिक व्रत है। लेकिन महाव्रत में तो कोई मुझे देगा तब भी मुझे नहीं चाहिए। ऋषभदेव भगवान को जब लोगों को विधि नहीं मालूम थी तो क्या करते थे, महाराज क्या चाहिए कुछ तो बोलो, आप तो निकल जाते हो ऐसे ही सामने से, चाहिए तो है आपको, बताते नहीं हो क्या चाहिए, आप हाथी ले लो, घोड़ा ले लो, हीरे जवाहरात ले लो। फिर कुछ दिन में उनको समझ में आया कि शायद महाराजा हैं, राजा महाराजा बहुत विवाह करते हैं, तो आप ऐसा करो हमारी कन्या ले लो, ऐसा कहते थे महाराज, ऐसा लिखा उसमें पुराण में कि आप कैसे भी राजी तो हो जाओ, आहार कर लो, आपको जो चाहिए हो वो ले लो, तो वो नहीं लेंगे, ये महाव्रत। और अनुव्रत में श्रावक अपने योग कोई वस्तु देता है तो उसे तो ले लेंगे, लेकिन कोई नहीं देता तो उसे ग्रहण करने का भाव नहीं रखेंगे, यही उसका अचोरी अनुव्रत है। इतना अनुव्रत में पालन करता है एक गृहस्थ, जो चीज अपनी नहीं है, मैंने अपने बिना एफर्ट के अपन ने प्राप्त कर ली है, ये भी ध्यान रखना भैया, बिना एफर्ट के, ये जितनी भी लॉटरी वॉटरी वाला मामला है वो सब चोरी है, चोरी। ईमानदारी से पूछा जाए चाहे वो मंदिर में ड्रॉ खोला जा रहा हो, आजकल तो मंदिर में भी खोला जा रहा, कूपन बनते हैं इतने का ले लो, फिर बाद में निकाला जाएगा उसका ड्रॉ खुलेगा, फिर उसमें तीर्थ यात्रा का निकल आया, हाँ तीर्थ यात्रा करवाएंगे फोकट में, अपने पैसे से करनी चाहिए थी, इस तरह कर रहे हैं। मैं इस चीज का समर्थन नहीं कर पाया अभी तक, इतने सारे लोगों ने निकाली उसमें से क्या निकला, 500 रुपए का तो कूपन लिया और 5000 वाली बोली में जो अभिषेक का कलश मिलता है वो मिल गया, बड़े खुश कि 500 रुपया लगा करके और 5000 वाला बोली का कलश मिल गया, मेरे नाम लॉटरी खुल गई। अरे वाह, वो 4,500 रुपए का क्या हुआ? वो तो आपने कोई एफर्ट ही नहीं किया। ये सब वेल्थ विदाउट वर्क इज सिन। धन पैसा बिना मेहनत के जो प्राप्त किया गया वो सब पाप। ये इससे ही जुड़ा हुआ है। त्यागी वृत्ति क्या है ना, ये असंतोष का कारण है और कुछ नहीं। त्यागी वृत्ति को संतोष है कि हमारे पास जितना उतनी ठीक है, हमें ऐसे किसी उपाय से नहीं चाहिए कि 1 रुपया को टिकट खरीद लो और 1,00,000 रुपया मिल गए। वो नहीं खरीदेगा, वो कहेगा ठीक है मेरे को मिलना होगा तो मेरी अपनी कमाई से, मेरे अपने उससे मैं प्राप्त कर लूंगा। दोष कौन कौन से लग जाते हैं इसमें, अब आचार्य भगवंत ही बता रहे हैं। कह रहे हैं खुद तो चोरी नहीं करते, दूसरे का धन संपत्ति नहीं उठाते, न चुराते हैं, लेकिन चौर प्रयोग, चोरी करने वाले को चोरी करने की प्रेरणा देना। हमने छोड़ा है, तुमने थोड़ी छोड़ा, तुम तो करो। घर गृहस्थी में एक ने तो ले लिया व्रत, वो बाकी ने तो नहीं लिया, तो लड़के बच्चे कहते हैं कि आप उपाय तो बताओ, आप अभी तक तो कर दीजिए, अब आप वो टेक्निक हमें बता दो, आप भली मत करो, हम करेंगे अब। तो वो टेक्निक बताने में भी दोष लगेगा कि ऐसे हम 4 पैसे बचा लेते थे, ऐसे हम चुरा लेते थे 4 पैसे। ये चौर प्रयोग और चौरार्थादान, चोरी का सामान खरीद लेना, जिससे तो कोई नहीं बच पाता, बहुत मुश्किल है। दूसरे को प्रेरणा दे दी, इतना ही नहीं, उसकी जो सामान खरीद के लाया, जो चोरी करके लाया उसका सामान खरीद लिया, ये हो गया चौरार्था दान। और फिर तीसरे नंबर पर क्या कह रहे हैं, विलोप और सन्मिश, सदृश सन्मिश और हीनादिक मानोन्मान, ये 3 चीजें विलोप की जगह पर जो है, और विरुद्ध राजातिक्रम भी लिया हुआ है कहीं कहीं पर। हाँ, विलोप का मतलब जो नीति न्याय पूर्वक अपन को चीजें ग्रहण करनी चाहिए वो ना करके अनीति से उनको अपन ने प्राप्त कर लिया, यानी जो टैक्सेशन वगैरह था उसको बिना चुकाए और चीजों को अपन ने ग्रहण कर लिया, ये विलोप कहलाएगा। यानी राज्य की नीति का विलोप कर दिया, या कि राज्यातिक्रमण, जो एक कस्टम ड्यूटी या कि जो भी